श्राद्ध करता केवल माता पिता को या जिनका श्राद्ध करता उनको नहीं तृप्त करता, अपितु देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को तृप्त करता है। वो तिल जल आदि से तर्पण करते हुए तमाम आत्माओं को, यूं कह दो के सारे विश्व के आदरणीय पुरुषों को भी तृप्त करता है और जो अपने रिश्तेदार हैं उनको भी तृप्त करता है, जाने अनजाने लोगों को भी तृप्त करने का वो संकल्प करता है। ऐसा पुरुष जो कईयों को तृप्त करने का संकल्प करता है, तृप्ति के लिए तन से मन से धन से कुछ खर्च कर लेता है, वो अतृप्त कैसे रह सकता है? तो जो श्राद्ध करता है औरों को तृप्त करता है वो धन धान्य से यश से और प्रसन्नता से तृप्त रहता है, लेकिन जो पढ़ पढ़ा के विधि विधान का गुलाम बना रहता है उसके खोपड़ी में तर्क उठेंगे, कुतर्क उठेंगे, ईगो का पोषण बना रहेगा, आत्म पोषण से वो वंचित रहेगा। शबरी भीलन रहिदास चमार सदना कसाई तेरे तर्क का विषय बन सकते क्या? सारी बातें तर्क से समझ में नहीं आती, सभी बातें कानूनों से नहीं होती, हृदय से बहुत सारी ऊंची बातें होती। एक माई बड़ को फेरे फिर रही थी, मैंने पूछा तुम किस इच्छा से फिरती हो? बोले मैंने एक लड़की वकील को देखकर बड़ी गलती की, अब दूसरी लड़की मेरी वकील के आना जाए, वकील के पास खोपड़ी तो होती है लेकिन हृदय बिल्कुल ठन ठन पाल होता है। ये टेबल आज हटाया तो उसका क्या मीनिंग होता है? आज ये सब्जी बनाई और भिंडी में ऐसा रखा तो क्या मीनिंग हुआ? जरा जरा बात पे मीनिंग पूछता है, खोपड़ी खाली करता है, सिर खपाता है मेरी बेटी का। विवेकानंद बोलते थे बुद्धि का विकास तो किताबें पढ़कर इधर उधर सुन सुनाकर, बुद्धि में तो खूब संसार का भूसा भर लेते, हमने बुद्धि के विकास के लिए न जाने क्या क्या मजूरी की, लेकिन हृदय अविकसित रह गया। मानव जात का कल्याण हृदय के विकास से होता है, हृदय में ही हृदय ही रहता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो उस हृदयेश्वर को पाने की प्यास जिस समय जगे, वैसे तो कानून तो ये है कि आप ब्रह्मचर्य जीवन पालो, गुरुद्वार पढ़ो, लेकिन कहाँ आप गुरुद्वार पढ़ते हैं? आप तो अपनी सुविधा द्वार का ध्यान रख के आपने डिग्री प्राप्त कर ली। फिर शास्त्र का कानून ये भी कहता है 25 साल से 50 साल तक आप ग्रस्त में रहो, बाद में वानप्रस्थ रहो। आपकी खोपड़ी में अपने लिए प्रश्न क्यों नहीं आता है कि आप शास्त्र की बात कितनी मान रहे हैं? जन्म दिवस पर, अपने जन्म दिवस पर भी श्राद्ध वर्जित है और श्राद्ध न करना भी अपराध है। अपना जन्म दिवस, अमावस्या, पूनम, अष्टमी और पर्व के दिन, जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि, उन दिनों संभोग करना माना अपनी और पत्नी की कब्र खोदना है। विद्वान के बच्चे ये तुम क्यों नहीं मानते? चलती गाड़ी में चिट्ठी लिखकर प्रश्नों की जाल फेंक देते हो, लेकिन अपने जीवन में भी विद्वता का उपयोग क्यों नहीं करते हो? अकारण बुढ़े और कमजोर मति के कैसे बन गए? तो मानना पड़ेगा कि आपने गुरु मुख से विद्या नहीं पढ़ी, मास्टर के मुख से विद्या पढ़ी है। जयराम जी की, आपने सतगुरु के द्वार नहीं खटखटाए, आपने स्कूल और कॉलेज के द्वार ही खटखटाए। कॉलेज और स्कूल के द्वार से ऐहिक विद्या मिलती है, बुद्धि चतुर कुशल हो सकती है, लेकिन सतगुरु के द्वार से तो बुद्धि दाता के साथ हाथ मिलाने की योग्यता विकसित हो जाती है। ध्यान योग शिविर का मतलब है सतगुरु का द्वार खटखटाना, ध्यान योग शिविर का मतलब है सतगुरु के द्वार में प्रवेश पाना। और सतगुरु का द्वार हरि का द्वार, नाम दो है काम एक ही है। हरि द्वार में कुछ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इकट्ठे हुए थे, जिसने चिट्ठी लिखी उसको उत्तर दे रहा हूं। बोले हम तो हरिद्वार में आए हैं, तो तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ने कहा साधु को कि ऐ महाराज ऐसा मत कहो, आप हरिद्वार में नहीं आए, आप हर द्वार में आए। भगवान शंकर का यहाँ केदारनाथ का द्वार शुरू होता है। महाराज ने कहा तेरी खोपड़ी की ऐसी देसी, मेरे हरि आदि नारायण बद्रीनाथ का द्वार यहाँ से शुरू होता है। आपस में तू तू मैं हो गई, मुक्त में बाजी तक पहुंच गया केस। अंग्रेजी शासन था, घटित घटना है जयराम जी की। केस चला, मुद्दतों पर मुद्दत पड़ी। हरिद्वार है कि हर द्वार है? तुम्हारे जैसे बुद्धिमान अंग्रेज न्यायाधीश ने कहा दिस प्लेस इज नॉट हरिद्वार एंड हर द्वार, यहां हड्डी डालता है, ये प्लेस हरिद्वार। उस बदमाश विद्वान ने जजमेंट दे दिया कि हड्डी द्वार कहा जाए इसको, लेकिन उसका जजमेंट उसका मुंह काला करके वहीं दफ्तर में पड़ा रहा। हृदयवान तो अभी भी हरिद्वार या हर द्वार बोलेंगे, हड्डी द्वार नहीं बोलेंगे। नारायण नारायण नारायण। हाँ, ईश्वर के बारे में प्रश्न करता, कुछ समाज के हित का प्रश्न करता तो मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन तूने अपनी ईर्ष्या का परिचय दे दिया। मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे प्रश्न संत से करके अपनी नींद हराम मत करना, चैन गुमाना नहीं। नारायण नारायण नारायण। मेरा मनोरथ क्या है? मैंने सुबह कहा था कि हरियाणा में पंजाब में संतों को पहचानने की क्षमता है, श्रद्धा भी है और सोच विचार की क्षमता भी है। कहीं श्रद्धा है तो सोच विचार की क्षमता की कमी है, कहीं सोच विचार तगड़ा है तो श्रद्धा की कमी है। यहाँ दोनों चीजें ठीक ठीक मात्रा में दिखाई देती है। तो इसका बदला मरने के बाद मैं आपको कंधे पे उठाकर स्वर्ग में ले जाऊं, नहीं मैं तो डंडा यहाँ उठाऊं। खीर खाता है कि डंडा खाता है? ईश्वर का अनुभव आनंद पाता है कि फिर संसार के आपा धापी के डंडे खाता है? बोल, तुम्हारे बाप की जय। चुप बैठो बाबू जी, ये तो अच्छा लगता है। स्कंद पुराण काशी खंड में आया है। गृहस्थी के घर पर 9 प्रकार का अमृत सदैव रहना चाहिए, वो गृहस्थी सुखी रहता है। और बिना पैसे का अमृत है, आपके घर कोई भी आ गया, आपने मीठे वचन बोले और सौम्य दृष्टि से उसको निहारा, चाहे वो अपनी दुनिया में कितना भी बदमाश हो, क्रूर हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके द्वार आया है, इस समय वो अतिथि देव है। अतिथि में देवत्व देखो तो आपका देव जागृत होगा। ये गृहस्थी के घर का 9 प्रकार का अमृत आए स्कंद पुराण में काशी खंड में। एक तो जो भी आ गया मीठे वचन, दूसरी सौम्य दृष्टि, तो तीसरा सौम्य सुखद व्यवहार हिलचाल, चौथा आप सौम्य मन बना लीजिए, पांचवी बात वो आया है भले आपको गाली देता है, आपका कट्टर दुश्मन है और आपने उसको चुभने वाली बात कहकर रवाना कर दिया अपमानित करके, तो आपने अपने लिए अपमान का द्वार चौड़ा कर दिया और आपने उसको मान दे दिया, खड़े होकर सम्मान दे दिया। आधा तो उसको आपने जीत ही लिया उसी खड़े होने में। खड़े होकर आपने उसका आदर का भाव आपने व्यक्त किया। स्वागत के दो मीठे वचन, दो पानी के गिलास अथवा दो पैसे की कोई चीज वस्तु उसके लिए धर दी, कह दिया। सातवीं बात, प्रेम से आपने उसको पूछा, क्या तो बहुत कृपा हुई, कैसे आए, बड़ी कृपा थी। आठवीं बात, आप उनके पास बैठे थोड़ी देर। नौवीं बात है कि उसको विदा देने के लिए आप थोड़े चार कदम चल पड़े। वो आदमी भले आपसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपने ये नव अमृतों का उपयोग किया, आपका दिल बड़ा बनेगा और उसके दिल में आपका बड़प्पन बैठ जाएगा। आपने उसको अपना फर्नीचर दिखाया, अपनी हेकड़ी दिखाई, तो देखेगा कि ये सरकारी ऑफिसर है, हराम के पैसे मार मार के देखो। लोग कहे ये रब दी माया, मैं कह दो अन्याय। आपने धन दौलत और अपनी हेकड़ी से किसी को इम्प्रेस किया, तो थोड़ी देर के लिए भौतिक वस्तु से वो भले इम्प्रेस हो जाए, लेकिन आपका मित्र बनकर नहीं जाएगा। आपके लिए उसके दिल में कुछ के कुछ विचार उठेंगे। आप अपना ऐश्वर्य दिखाकर किसी को प्रभावित करने की गलती ना करो। आप अपनी बात कहकर और उस पर प्रभाव जमाकर उसको प्रभावित करो, ये बहुत छोटी बात है। आप उसके हृदय की बात सुनिए। लोग होते ने सुनाने लग जाते, लेकिन सब लोग आपकी सुनने के लिए नहीं होते। लोगों को अपने ही सुना हुआ बहुत होता है। लोग तुम्हारा दुख सुनने के लिए नहीं आए, लोग तो तुम्हारे द्वारा दुख मिटाने के लिए आए। लोग तुम्हारा अहंकार अपने पर थोपने नहीं आए, अपितु अपनी मनसा और अपनी आकांक्षाओं को तृप्त करने के लिए आपसे मिलते हैं। तो आप लोगों की तृप्ति के कारण बनिए, ऐसा न कि लोगों के आगे आप अपनी हेकड़ी के कारण बने। महाभारत में प्रश्न आया कि सबका प्रिय कौन बनता है, सभी का प्यारा कौन बनता है, जो अमानी है, जो मान नहीं चाहता, मान योग्य कर्म तो करता है लेकिन मान की चाह नहीं रखता, वो सबका सम्मान्य हो जाता है, जैसे मैं हूं तुम्हारे सामने। ऐसा हिम्मत से बोलता हूं, बोलो जयराम जी की। कभी कभी छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। हृदय में आप मान की इच्छा ना रखो, मान योग्य कर्म करो, आप अमानी रहो। विष्णु शास्त्र नाम में तीन नाम भगवान के आते हैं, अमानी मान दादाज। मान योग्य कर्म करे लेकिन मान चाहे नहीं और दूसरे को मान दे, वो सन्मान्य होता है। पितृगण को तृप्त करने से श्रेष्ठ संतान की उपलब्धि होती है। धन धान्य और विद्यावान कुटुंब में आत्माएं आती, पूरी आयुष्य भोगने वाले कुटुंबी होते हैं। आरोग्य और लौकिक सुख मोक्ष का और स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला रहता है, जो श्राद्ध कर्म करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, करवाते हैं विधिवत, उनके लिए इतना सारा सुख कहा गया है। और जो नहीं करते उनके पास हेरा फेरी करके धन तो हो सकता है, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र और मधुर भाषिणी पत्नी नहीं हो सकती है, डाइवोर्स देने वाली लेडी हो सकती है, और छुरे से गर्दन काट के सिर फोड़ कर मगज खाने वाला बेटा हो सकता है। अमेरिका में ऐसे कई बेटे और अखबारों में तुम सुनते होंगे, बाप का सिर काट दिया तो बाप कहता था तू मेरा माइंड खा गया, मेरा माइंड खा गया। तो एक दिन बाप ने बोला तेरे को क्रिसमस है क्या चाहिए, मॉल में गए ये चीज लिया, एक चीज लिया, एक छुरा भी ले लिया। बाप पीपा के सो गया और पिता ने बिस्मिल्लाह कर दिया, माय गॉड। और फिर वो जैसे नारियल फोड़ते उसका सिर फोड़कर उसका मगज तोड़ के चबाने लग गया। पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी, पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों किया, बोले मेरे को रोज बोलता है तू मेरा माइंड खा गया, मेरा माइंड खा गया, तो मैंने खा के देखा कैसा है। ये श्राद्ध न करने वाले के कुल खानदानों में ऐसी संतानें आ सकती है मदन मोहन मालवीय की पिता ने देखा कि अंग्रेज बहुत सता रहे, उन्होंने विधिवत श्राद्ध कर्म किया, ऊंची भुजाएं करके प्रार्थना की कि हे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, अगर मेरे श्राद्ध से आप तृप्त हुए हो तो मेरे घर में एक ऐसा संतान बुद्धिमान विद्वान आए जो अंग्रेजों के भगाने का काम भी करे और यशस्वी जीवन जिए। उनके घर में मदन मोहन मालवीय आए। भगवान राम ने श्राद्ध किए थे अपने पिता दशरथ के। पैठाण है महाराष्ट्र में, एकनाथ महाराज ने अपने पिता का श्राद्ध घोषित किया। पत्नी गिरजाबाई पति परायणा श्राद्ध की सामग्री तैयार करी। भीख मंगेश महाराज के द्वार पर आ बैठते थे, कथा से लोग जाते और कुछ दक्षिणा मिलती। अब तो महाराज के घर से सुगंधी आ रही है, कहीं हलवा तो कहीं पूरी की सुगंधी तो कहीं कुछ तो कहीं खीर की सुगंधी। भीख मंगे आपस में चर्चा कर रहे हैं, आज तो एकनाथ महाराज के यहाँ भाई श्राद्ध है, भंडारा है। दूसरे ने कहा हमारे भाग्य में तो वही रूखी रोटी नहीं तो, अरे बोले श्राद्ध का मिलेगा, बोले मिलेगा तो बचा खुचा दो पूड़ी मिल जाएगी, एक धक्का मिल जाएगा और क्या। एकनाथ महाराज ने सुन लिया, गिरजा गिरजे गिरजू कहिए श्राद्ध की सामग्री हो गई, तैयार हो गई क्या। हाँ नाथ, तो श्राद्ध तो कहते हैं 12 के बाद जितना श्राद्ध ढलान के तरफ जाए उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, अर्थात 12 के बाद जो सूर्य ढलता जाए तो अच्छा माना जाता है। तो ब्राह्मण लोग तो मध्याह्न को आएंगे, तुमने अभी ये तो भोर है 8-9 बजे होंगे, तो क्या ये श्राद्ध की सारी सामग्री इन दरिद्र नारायणों को खिला दे और 12 बजते बजते वैसी की वैसी दूसरी तुम बना सकती हो। नाथ संकोच ना करिए, मैं अकेली नहीं हूं, आपका आशीर्वाद भी है। ओहो, पत्नी मान पति को दे रही और पति मान पत्नी को दे रहे, ऐसे सियाराम का जीवन था। आशाराम चाहता है कि आपका जीवन भी पति पत्नी का ऐसा हो। अरे तूने क्या कर दिया, तो तेरे को भी तो मैंने बोला मिस्टर ऐसा नहीं, तू मानता ही नहीं। अरे तू तड़ाके की भाषा, पति पत्नी नारायण नारायण। एक बार श्री राम और सीता जी में मधुर युद्ध चल पड़ा। लखन भैया जंगल में गए थे फल फ्रूट आदि लेने को, कंदमूल। सीता जी कहती है कि देखो वो लता कितनी भाग्यशाली है कि उसको पेड़ का सहारा मिला और ऊंची उठी है, दूर तक अपनी शोभा सुवास दिखाने में सफल हो गई। लता कितनी भागशाली। राम जी बोलते हैं कि सीते, मुझे तो वृक्ष भागशाली लगता है, तमाम वृक्ष साधारण लग रहे हैं, लता का संग मिला है इसलिए वृक्ष शोभायमान है। सीता जी समझ गए कि प्रभु मेरी बड़ाई कर रहे हैं और प्रभु जी समझ गए कि सीता मेरी बढ़ाई कर रहे। प्रभु जी सीता की सीता को बड़प्पन दे रहे हैं और सीता जी प्रभु जी को बड़प्पन दे रहे हैं। माया सुन रही हो देवियां, देवता लोग आप भी सुन रहे हो। आपस में मधुर युद्ध चल पड़ा, दोनों अपनी बात पर अड़े। इतने में लखन भैया आए, भैया भैया तुम ही हम दोनों के झगड़े का निपटारा करो। देखो लखन भैया, लता भागशाली है कि नहीं, उसे वृक्ष का सहारा मिला आदि आदि का। राम जी कहते हैं कि न्याय करने के पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। भैया अब मेरा पक्ष भी सुनो, लता भागशाली है कि वृक्ष भागशाली है। अगर ये वृक्ष को लता का साथ नहीं मिलता तो और वृक्षों के नहीं रुखा सूखा दिखता, लता का साथ मिला है तो वृक्ष शोभायमान हुआ है, तो वृक्ष भागशाली है ना। लखन भैया को समझने में देर क्यों लगेगी, वो जान गए। बोले मेरे को तो कुछ और ही लगता है। बोले क्या, लत्ता भाग्यशाली है? बोले प्रभु न वृक्ष भाग्यशाली है न लत्ता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो लखन लाला है कि दोनों की छाया और शोभा में कैसे कैसे आपके इष्ट और आपके पुरुष कैसे सुंदर स्वभाव जीवन जीते थे। एक बाघरी लकड़ा था, लड़का था, उसका नाम लखमनिया था और दूसरे का नाम रामला था। लोग बोलते थे राम लक्ष्मण भाई तुम भी भाई यार, तुम रामलीला का धंधा करो चल पड़ेगा। उन्होंने रामलीला का धंधा एक्टिंग बैक्टिंग सीखी, कोई कंपनी में रहे, फिर अपने इलाकों में रामलीला चालू कर दी। वो जमाने में 54-54 की टिकट चलती थी, 58-54 टिकट लेने वालों ने ली और रामलीला का पर्दा एक दिन हटा, रामलीला हुई, दूसरे दिन हट, तीसरे दिन, ऐसे करते करते राम वनवास तक तो पहुंच ही गए, सीता हरण भी हो गया। अब वो जो रामला था और लखना लखनिया था, उन दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई पैसे के बारे में और चाय पानी के बारे में, एक दूसरे की पिटाई कर दी दोनों भाइयों। तो रामलीला में जरा देर हुई तो मेकअप वेकअप तो कर रखा था, लेकिन तू तू मैं जरा लखन की धुलाई ज्यादा हो गई, लखन भाग गया। अब सीटियां बजी तो राम आए, तुम्हारे टिकट के पैसे वसूल होंगे, रामलीला थोड़ी देर से शुरू हो रही है, उसका कारण है वो बदमाश रामी की औलाद लखनिया जरा मेरे आमने सामने हो गया, मैंने उसको बराबर मारा है, वो भाग गया। तो अब मैं दायां पैर आगे रख के बोलूं तो आप समझना कि राम बोल रहा है, और बायां पैर रख के बोलूं तो आप समझना लखनिया बोल रहा है। उसने रामलीला शुरू की। अब लखनिया को मेघनाथ का बाण लगा, रामलीला तो शुरू हुई। अल्लाह राम फिर विलाप कर रहे दायां पैर रख के, भाई लक्ष्मण उठो, हनुमान हनुमान देर न करो, जाओ संजीवनी लाओ, हनुमान भैया संजीवनी लाओ। वो हनुमान खड़ा है कि रामला का बच्चा 8 दिन का पगार बाकी है, पहले हरामी पगार रख, बाद में जाता हूं। आईजी गया इंस्पेक्शन करने को, इंस्पेक्टर गए, जज साहब भी गए जेल में इंस्पेक्शन करने को। जेलर ने कहा सर रामनवमी को हमने रामलीला का यहाँ आयोजन किया था। तो बोले कोई पार्टी मंगाई थी? बोले नहीं सर, अपने कैदियों को ही सारे ड्रामा व्रामा का सारा ट्रेनिंग दिया था और बहुत सर वंडरफुल रामलीला हुई थी, बस देखने वाले दंग रह गए, मुंह में उंगली डाल दी। अच्छा भाई तुम तो कैदियों को आदर्श पुरुष करके घर भेजोगे? जेलर तुम तो कैदियों के लिए देवता पुरुष हो, जेल में तो इसीलिए लाया जाता है कि लोगों के हीन संस्कार मिटे, अच्छे संस्कार मिले, तुमने तो बड़ा काम किया। बोले सर लेकिन एक बात है। बोले क्या है? बोले वो रामलीला चल रही थी तो कोई राम बने थे, कोई लखन बने थे, कोई मेघनाथ बने थे, कोई रावण बने थे। बोले वो तो होते ही है, तो कोई हनुमान जी भी होने? बोले हाँ हनुमान जी बने थे। अच्छा हुआ सर, रोल तो अच्छा हुआ, लेकिन हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गया, जेल का द्वार खोल दिया था, 3 दिन हुए अभी तक लौटा नहीं सर। अरे जेलर तेरे पास भावना है लेकिन समझ कम है, श्रद्धा के साथ दूर का सोचना भी चाहिए। तो श्रद्धा तो और जगह पर बहुत है, दूर के सोचने वाले लोग मुझे चंडीगढ़ पंचकुला हरियाणा में गोरख जागता नर सेवी है। पत्थर की मूर्तियों में तो भगवत बुद्धि करना ठीक है, और जगह अल्लाह बुद्धि करना तो ठीक है, लेकिन जगे हुए संतों में भगवत बुद्धि करना ये पंजाब सबसे आगे है। हरियाणा पंजाब ये मिले जुले हैं दिल्ली साइड आदि। साधुओं में कहावत है ज्ञानी तो पंजाब, कोई ज्ञानी संत है तो पंजाब में उसकी वाणी की कदर होगी। छूत छात तो मारवाड़, मेरे को अड़ो नहीं, मेरे को छुओ नहीं, ये छुओ नहीं, छुत छात वाला हो तो उसकी पूजा सम्मान मारवाड़ में होगा। और ये फलाने भगवान, ये फलाने भगवान, ये फलाना भगवान है, इस भगवान के लिए आज लड्डू बनाओ, इस भगवान के लिए खीर बनाओ, इस भगवान को आज मोहन भोग लगाओ। ढोंगी तो गुजरात, ढोंग का धंधा करना हो तो गुजरात में आपकी ग्राहकी खूब चलेगी, जय राम जी की। लेकिन मेरी ग्राहकी तो बिना मंदिरों के चल रही, मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया आश्रम में। मुझे ढोंग करना ही नहीं कि ठाकुर जी के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो ठीक है, धन्यवाद, लेकिन ठाकुर जी के नाम पर आज ठाकुर जी को टिटोनी घड़ी चाहिए, आज ठाकुर जी को ये वेश चाहिए, ठाकुर जी के लिए चाहिए, ठाकुर जी के लिए चाहिए कि फिर आपके मन को चाहिए। इसे तो सीधा बोल दो, बाबा मेरे को चाहिए, तो ईमानदारी तो होगी। ठाकुर जी के नाम ढोंग क्यों करना। लेकिन उधर खूब चलता है ऐसा, कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा कुर्र, दक्षिणा धर। और हमारा आश्रम होने के बाद ये ग्राहकी थोड़ी ठंडी पड़ गई, क्योंकि हमको वेदांत ग्रंथ और शास्त्र और प्रैक्टिकल अंतर आत्मा हृदय मंदिर की यात्रा हमें आसान लगती है। बाहर के मंदिर के देवता भी अगर राजी हो जाएं तो हृदय के मंदिर को खोलने वाले सद्गुरु देव के पास ही भेजेंगे। कलकत्ता में काली माता का रानी रासमणि ने मंदिर बनाया, कई पुजारी आए गए, लेकिन एक असली पुजारी आए गए रामकृष्ण। वे माता जी के लिए वस्तुएं मांगकर खुद हड़प नहीं करते थे, मांगते नहीं थे, जो मिल गया माता जी के अनुकूल ही बनाकर माता जी को समर्पित करते, और इतनी सच्चाई से समर्पित करते कि माता जी प्रकट होकर उनके हाथ का लेती भी थी। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एक अद्भुत सच्चाई है, और मजहबों में तो यह है कि लिखा हुआ है, ये गॉड का, अल्लाह का, भगवान का फरमान है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है आपको मानना पड़ेगा। सनातन धर्म के भगवान अर्जुन को सारी बातें बताकर कहते हैं, यत इच्छसि तत् कुरु, ये तेरे को बताया, कर्म को योग बनाने की रीत, ज्ञान योग, भक्ति योग, नैष्कर्म सिद्धि योग, शरणागति योग, ये सारे तुमको बताए, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो आपकी बुद्धि का, आपकी सूझबूझ का आदर जितना वैदिक धर्म में है, जितना हिंदू सनातन धर्म में है, दूसरा दुनिया के किसी मजहब में इतनी उपासक को छूट और बुद्धि का आदर इतना किसी धर्म में नहीं दिया गया कि आपकी बुद्धि का सम्मान, आपकी सूझबूझ का सम्मान, आपको स्वातंत्र्य, बस इसमें लिखा है आप मानो। 1965 में भारत और पाक के बीच में जरा खिंचाव हो गया था, हल्का फुल्का युद्ध छिड़ गया था। राजस्थान में जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर तनोट मातेश्वरी का मंदिर है, उस मंदिर की जागृत देवी, उस मंदिर में सनातन संस्कृति के मंत्रों के अनुसार स्थापना हुई होगी, उस देवी के मंदिर को सजाग मंदिर मानने वाले सैनिक जब बम गोलों की वृष्टि होती तो मंदिर के इर्द गिर्द आ जाते, क्योंकि उस देवी माता की कृपा से यहां सारे बम गोले निरस्त हो जाते हैं। 1965 में जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर तनोट मातेश्वरी मंदिर सीमा के निकट पाकिस्तान के तरफ से 3000 बम दाबे गए कि इनकी देवी रक्षा कैसे करती, हमें देखेंगे, ये सब बुत प्रस्ती वाले काफर लोग हैं। और उस समय का ब्रिगेडियर शाह नवाज खान मंदिर को निशाना बनाया, 3000 बम दाबे और बराबर मंदिर के चरणों में 450 बम गिरे, एक भी फूटा नहीं। वो ब्रिगेडियर हवा हो गया, उसका ईगो, उसका अहंकार चकना चूर हो गया। आखिर कुछ समय के बाद पाकिस्तान का ब्रिगेडियर शाहनवाज खान मंदिर के कमेटी के लोगों को संदेशा भेजा, पुजारी से और वहां के लोगों से समझौता कर मुझे वहां दीदार करने की आज्ञा दिला दो। आज्ञा मिली। हिंदू संस्कृति है, चाहे मुसलमान आए चाहे ईसाई, हमारे भगवान तो सबके। शाहनवाज खान मंदिर में आए और चांदी का छत्र चढ़ा के गए, वो अभी भी निशाना मौजूद मिल सकता है। फिर 1971 में द्वितीय युद्ध छिड़ा 16 दिसंबर, और फिर सैनिकों ने देखा कि यहाँ दूसरा ब्रिगेडियर है और वो भी अपना अहंकार आजमा रहा है। हम तो फिर माँ की शरण जाएंगे। और उस परिसर में बम निरस्त हुए, सैनिकों ने वहां विजय स्तंभ मंदिर के द्वार पर स्थापित किया। वो आज भी आप देख सकते हैं। आपके मंत्रों में वो शक्ति है कि देवता को सचेत कर दे, सजाग कर दे, आपके हृदय की सच्चाई हो और मंत्र की विधि हो। तो रामकृष्ण में ये ताकत थी, वल्लभाचार्य में ये शक्ति थी, धन्ना जाट में ये शक्ति थी, नानक जी में ये शक्ति थी। मंत्र कह के यूं कर दिया, पहाड़ रुक गया। आपके सबके अंदर वो शक्ति छुपे, लेकिन जितना संकल्प दृढ़ और जितना अंतःकरण शुद्ध, उतना मांत्रिक शक्ति, संकल्प शक्ति साकार हो जाती। ऐसे साकार शक्ति को करने वाले रामकृष्ण देव के पास तोतापुरी गुरु आए। रामकृष्ण माँ काली के पास गए कि माता जी, मुझे अभी गुरु करने की जरूरत है क्या? माँ ने कहा, अवश्य माता, तुम मेरे हाथ का प्रसाद ले लेती हो, मेरे सूंघे हुए फूल सुगंधी है कि नहीं, चेक किए हुए फूल तुम स्वीकार करती हो, तुम्हारे साथ में बात कर सकता हूं, फिर भी मुझे गुरु की जरूरत है। माँ ने कहा, माँ माँ करके पुकारता है, मिलन होता है तो आनंद होता है, फिर मेरा जाना होता है तो वहीं का वहीं हो जाता है। माँ जिससे माँ है, उपास्य जिससे उपास्य है, उपासक जिससे उपासना करता है, दोनों का एक चैतन्य आत्मा है। इसका ज्ञान तो सद्गुरु की कृपा से होगा। तोतापुरी गुरु को सच्ची प्रेरणा देने वाली काली माता ने तोतापुरी ओ रामकृष्ण को सच्ची प्रेरणा दी, और तोतापुरी महाराज के चरणों में रामकृष्ण ने दीक्षा ली, और फिर परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार हुआ। प्रचेताओं को शिवजी के दर्शन हुए, भगवान विष्णु का भी उपासना करने के बाद दीदार हुआ, लेकिन काम और क्रोध का बीज नहीं मिटा। जब नारद जी ने सत्संग सुनाया, तब काम वृत्ति और क्रोध वृत्ति और लोभ वृत्ति का उद्गम स्थान अपना चैतन्य सांख्य शास्त्र के अनुसार असंग पुरुष का साक्षात्कार हुआ, तब उनका काम क्रोध बाधित हो गया। तो भगवान के दर्शन के बाद भी सत्पुरुषों के सत्संग की जरूरत रहती है। इसलिए भगवान कहते कि संत मुझसे भी विशेष मानव कल्याण का काम करते हैं। भगवान तो अवतार लेकर आए तब हुआ, लेकिन भगवान का भगवत तत्व और भगवान के नाम की महिमा और साधना की भूख जगाने वाले अगर संत नहीं होते तो भगवान की स्मृति हम लोग कैसे करते। मेरे गुरुदेव ने एक कश्मीर गए, पंजाबी संत थे, मस्त है अलमस्त, वैसे ही पंजाब का शरीर तो आए दबा दम। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ वर्षों पहले आए गुजरात में और मेहसाणा में ठहरे थे। जिसके घर ठहरे उन्होंने रात को जगाया, अटल जी अटल जी अटल जी। उठे, बोले क्या है? बोले आप दूध पी लो। तो एक छोटा सा छटांग भर का कप था पित्तल का, और वो रखा भी। तो बोले तो चुटकी लेके बोलने वाला आदमी है वो, बोले इतना तो मेरे कान में ही डाल दो, इसके लिए मेरी नींद खराब की तुमने। तो गुजराती भैया बेचारे दूध कितना पिए, चाय कितनी पिए, अब पंजाबी का गिलास ऐ देख ले और दो परोठे खाए खाली, थोड़ा सा हलवा खाया और एक लस्सी का गिलास पिया, अरे देख ले भाई। उनके लिए तो दो दिन का हो जाता है। नारायण हरि, थे भूख खूब लग रही है। जैसे पेट की भूख तेज है, ते रब दी भूख तेज हो जाए तो मैं शिविर जरूर कर सकता हूं। ध्यान योग शिविर दी भूख तेज हो जाए, मरने के बाद रब मिलेगा वो नहीं, जीते जी हजरा हजूर अंतरात्मा का अनुभव करने की भूख जग जाए तो फिर शिविर के दिन, चाहे पंचकुला, चाहे चंडीगढ़ आश्रम, चाहे हिमाचल के साधक बोल रहे हैं, जहां भी वातावरण सुरम्य होगा वहां एक बार अगर शिविर में आप आ गए 3-4 दिन के लिए, आपने 12 साल 25 साल से जो भजन कीर्तन जो किया और जो पाया है वो सब का सब आपको नन्हा दिखेगा, ऐसे अनुभव होंगे। आप 12 साल से बैलगाड़ी में चलते हैं या टांगे में चलते हैं उसकी यात्रा अलग है, और 12 घंटे अगर जहाज में या जेट में बैठते तो उसकी यात्रा तो निराली होती। यहां से जो गलती से भी आ गए एक बार अहमदाबाद शिविर में, हालांकि पोल्यूटेड वातावरण हो गया है और यहाँ का हवामान ठंडा है, खुशनुमा है, वहां का थोड़ा गर्म है, तो एडजस्ट होने में 1-2 दिन लगता है शरीर को, फिर भी एक बार जो शिविर में आए वो कई बार आए। इतना किराया, इतनी कठिनाइयाँ, इतना कुछ सहकर भी 3 दिन की शिविर के लिए 4 दिन तो आपका आने जाने में और शरीर को रेस्ट करके ठीक करने में लग जाते हैं, फिर भी आप शिविर का याद भूलते नहीं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनात् अपि, श्रवणात् पठनात् अपि सर्वपापै प्रमुच्यते,
सर्वपापै प्रमुच्यते।
श्रीमद् भागवत की कथा अकाल मृत्यु को टालती है, आयु बढ़ाती है, आरोग्य बढ़ाती है, श्रवण से, पठन से, सुनने से। भगवत कथा के प्रथम स्कंद में ये लिखा गया महात्म विभाग में, अश्वमेघ 1000, बाजपे सैकड़ों, यज्ञ कर लो विधिवत, उसका फल बहुत बढ़िया है, लेकिन भगवत कथा के फल के आगे वो बढ़िया फल भी 16वें से की बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा पुण्य फल आपने श्राद्ध पक्ष में भगवत कथा सुनकर प्राप्त किया। भोजन तैयार है, भिखमंगों को खिला दिया, अब दूसरा भोजन बन रहा है और बन भी गया है। ब्राह्मणों को सूचना दी गई, ब्राह्मणों ने खबर सुन ली थी कि हमारे लिए भोजन बना, वो इन बदमाश नशेबाजों को, अपराधियों को जो नाते तक नहीं है, और इनकी भिखमंगी माइयां भिखारणे मासिक धर्म भी नहीं पालती, और ये सब अशुद्ध अवस्था में ही जहां तहां वातावरण बिगाड़ने वाले लोगों को ब्राह्मण तुल्य समझकर भोजन कराया, ये ब्राह्मणों का अपमान है। एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई पैठान का, कोई ब्राह्मण एकनाथ के पास भोजन करने नहीं जाएगा, भले इसके पितर असंतुष्ट रहे, अतृप्त रहे, इसका कुल नाश हो। एकनाथ महाराज को पता चला कि इन्होंने तो हड़ताल बोल दी, जब ऑटो का हड़ताल होती है, टैक्सी की हड़ताल होती है, तो कोई टैक्सी ड्राइवर निकला तो दूसरे लोग हवा निकाल देते, लठधारी रख जाते। तो कोई भी ब्राह्मण भोजन करने जाए गलती से भी, तो 2 लठधारी रख दिए महाराज के द्वार के आगे कि हमारी हड़ताल सफल होनी चाहिए। अब एकनाथ समझ गए कि ये पैठान के ब्राह्मण तो आएंगे नहीं, और मेरे श्राद्ध एकनाथ में वो सामर्थ्य था। उन्होंने हाथ पैर धोए, अंजलि ली, सुमरण किया पितरों का, जो श्री माली का दादा अभी मर गया था, जो देवेंद्र का काका मर गया, फलाने गए, उनका पितरों का पितर लोग से आह्वान किया, ये नहीं खाते तो उनके बाप और दादाओं को बुला के खिलाऊंगा। उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और जब पितरों को बुलाकर पितर लोग से जिमाया और ब्राह्मण प्रसन्न होते तो नमः पार्वती बताए हर हर महादेव, तो दूसरा ब्राह्मण बोलता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नववंचवारम, वो एक श्लोक बोलता है तो दूसरा ब्राह्मण दूसरा श्लोक बोलता है, बड़ी महफिल जमी। तो वो जो लठधारी आया उन्होंने दरार से देखा कि अरे तो श्रीमाल का दादा, अरे वो उसका बाप, भागो रे भागो। ब्राह्मणों को बुलाया कि अपन तो नहीं गए, अपने बाप दादे और ताऊ और चाचा जो मर गए उन सबको बुला कर इन्होंने तो भोजन करा दिया, ये तो एकनाथ महाराज समर्थ योगी हैं, खाली कथाकार नहीं है, खाली कथावाचक पंडित नहीं है, तो पहुंचे हुए समर्थ संत। ब्राह्मण आया है तब तक तो चल वो गए, आखिरी का जो बूढ़ा था दक्षिणा लेते देते आशीर्वाद लेते देते देर से उसको तो पितर को उन्होंने देखा। सारे पैठान के ब्राह्मण एकनाथ के चरणों में पड़े, इस प्रकार की कथा मेरे पढ़ने में आई और एकनाथ महाराज इतने उच्च कोटि के संत हो गए कि कपोल कल्पना उनके लिए वो नहीं लिख सकते या नहीं कर सकते, इतने सत्यनिष्ठ महापुरुष थे। नानक जी की वाणी के लिए कोई कह दे ये गप लगा दिया नानक जी ने तो मैं उसको सुना दूंगा, कबीर जी के लिए कह दे कबीर कितने उच्च कोटि के संत थे, और कबीर ने कहा माई मुवे एक फल, माँ मर जाए तुम्हारी तो एक फल होगा, पिता मरे फल चार, बाप मर जाए तुम्हारा तो चार फल होंगे, भाई मरे तो हानि होवे, कहे कबीर बेचार। ये पहली है, ये माई कौन सी, माँ कौन सी, बाप कौन सा और भाई कौन सा, ये खोजने को तुमको कहा है मैंने, अगर खोज लिया तो बताओ, नहीं तो फिर अगली शिविर हो तब तक खोजते रहना, उत्तर बता दूंगा तो फिर ये पहली का मजा मेरा जरा चला जाएगा, इसका उत्तर जल्दी से सब लोग नहीं खोज सकते। दूसरा एक प्रश्न मैंने छोड़ा हुआ है समाज में, बुद्धि क्या खाती क्या पीती और उसका स्वरूप क्या, उसका सही उत्तर आज तक कोई लिख के भेज नहीं सका, कईयों ने लिखे, किसी का एक उत्तर सही है, किसी किसी के दो सही है, किसी किसी के तीनों गप है, तीनों सही वाला एक बंदा भी नहीं मिला। बुद्धि क्या खाती क्या पीती और उसका स्वरूप क्या है। नारायण नारायण नारायण, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि मगर में मरने से मुक्ति होती है, लेकिन कबीर ने कहा कि लिखा है, हमने लिखा है। और लोग काशी में मरने को आते हैं, कबीर जी जीवन भर काशी में रहे लेकिन मरने के दिनों में मगर में चले गए, आपको पता है कबीर जी सारे नीति नियमों की ऐसी तैसी करके चले गए, जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं चलता, और प्रेम जब जोर पकड़ता है तो ईश्वर के साथ भी शरारत कर सकता है, तो तुम्हारे नियमों के साथ भी प्रेम शरारत करने में समर्थ होता है। जयराम जी की कहा विश्वनीयता, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान को तुम छाछ दिखाकर नचाओ लेकिन वो पियों ने नचा दिया, ये आपको पता है ना साहब जयराम जी की। ऐसा कौन से पुराणों में शास्त्रों में लिखा है कि गोबर का तगारा भगवान से उठवाओ और भगवान के गालों पर गऊओं का गोबर टिल्ले करो, ये कौन सी उपनिषदों में लिखा है, लेकिन हुआ है ना भैया। तो आप अपने दिल को दुखी मत करिएगा, दिल को विशाल बनाइएगा। नारायण नारायण नारायण। तो ये भगवत कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली है। सात दीप नौ खंड लोक तीन लोक जग माही, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। आप परमात्मा शांति पाइए, परमात्मा विश्रांति पाइए। यम दंडंत यम दंडात स्थाति जीवतम च शरीराणाम तथापि पाप पातकम मूढ कुरुषे निर्भया सदा। मृत्यु ये अक्षर दो जिसके ललाट पर लिखे वह प्राणी सब प्रकार के क्लेश देने वाले पापों में कब तक पड़ा रहेगा। पाप न जाने क्यों करता है। अरे मूर्ख, प्राणियों का जीवन यमराज के दंड के अधीन है, यह जानते हुए भी तू निर्भय होकर पाप कर रहा था और सुयशा ने तुझे चेताया, अब तू चेतता रहे, क्यों सदा पापों में लिप्त हो रहा है। पद्म पुराण क्रिया योग खंड 16, 31, 33 में ये बात आती। भद्र तनु सिर पकड़ के बैठ गया धरती पर, हे धरणी देवी, हे मात्री, तू मुझे सत्य बुद्धि दे, हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, तू मेरे कर्मों को मत देखना, अपनी रहमत और कृपा को देखना, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, तुलसी होई राम को राम भजी तजे को समाज, हे परमेश्वर मैं तेरा हो जाऊं, तेरी प्रीति जग जाए, सत मार्ग दे, अंतर आत्मा की प्रेरणा हुई मार्कंडे ऋषि के चरणों में जाओ। ऋषि कैसे कहते हैं, ऋषि तू मंत्र दृष्टा रह न करता रह, कौन से मंत्र से क्या वाइब्रेशन होते, कौन से मंत्र से कौन से विकार दूर होते, कौन से मंत्र से कौन सा इष्ट प्रकट होता है, कौन से मंत्र से क्या संभावनाएं होती है, इसको ठीक से जिसने ठीक से जान लिया उसे ऋषि कहते। आज तो जिसको आए वो कोई मंत्र पकड़ा देता है, गुरु होने का शौक पूरा कर लेता है। गुरु बनना खतरे से खाली नहीं है, गुरु बनना है तो अपने तप की कुछ किरणें शांभवी दीक्षा के द्वारा दी जाती है। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर के नाव, आगे गुरु पीछे चेला दे नरक में ठेलम ठेला, कन्या मन्या कुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर तू चाहे थर चाहे मर, ऐसे गुरुओं की तो बहुत विचित्र दशा होती। गुरु होना एक अभिशाप है, एक किसी पाप का फल भोग रहे हम। जयराम जी की इतना सारा झमेला लेकर लोड लेकर गाड़ी चल रही, गाड़ी की क्या हालत हो रही हम जानते, लेकिन आपका थोड़ा आग्रह होता है, प्रेम भरा आग्रह होता है, और हमारी शुरू की गलती है कि हमने मंत्र दीक्षा का धंधा चालू कर दिया। अब बंद करना चाहते लेकिन बंद हो नहीं पाता है, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, कैद में है बापू जी। अगर ना बोलते तो आपका दिल दुखता, और हाँ बोलते हैं तो मेरा श्रम और जिम्मेदारी बढ़ जाती। नारायण हरि, नारायण हरि। अब मंत्र दीक्षा दिया, ऐसी कोई जगह हो, ध्यान योग शिविर हो, 3 दिन 4 दिन उनको बिठाया जाए और संप्रेक्षण शक्ति से इनकी वो शक्तियां जगाई जाए, इनके जीवन में अनुभव की यात्रा हो। दुनिया भर का चिंतन करना पड़ता है, नहीं तो अपने तो फकीर तो रहा ना था किसी से, क्या मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं, हमसे तू अलग नहीं, तुझसे हम अलग नहीं, ऐसी मस्ती में छकने वाले इंद्र के वैभव को भी तुच्छ गिनने वाले, और यहाँ भाई सुबह आओ दोपहर को आओ शिविर करो, तू क्या लाया, क्या बिठाने की व्यवस्था, टेंट किसका, कैसा करोगे इसका, अरे क्या दुनिया भर का झंझट, गले में घंट बांध के चलना पड़ता है। ये सब गुरु बनने का ही तो फल भुगत रहे हैं। आप ही सोचो, 2-2, 3-3 दिन का हवा फिर 62 साल की उम्र में आप करके दिखाओ तो पता चले। क्लाइमेट फेर, टाइम टेबल, ये वो सब, तो कैसा कैसा उतार चढ़ाव से शरीर को संभाल के पुचकार के चलाना पड़ता है। ध्यान समाधि ये वो सब नियम किनारे रख कर भागा भागा आना पड़ता है। ये सब गुरु होने की गलती का ही तो फल है, प्रसिद्ध होने की गलती का ही तो पाप फल भोग रहे हैं। नहीं तो मैं एकांत में ऐसी दुनियाओं में ऐसी मस्तियों में रहते थे कि आपको मैं क्या बताऊं। वो दिन अब याद आते तो लगता कि हाय भगवान, फिर से कब ऐसे दिन आएंगे कि कोई परिचित ना मिले, पहचानने वाला ना मिले। ऐसे दिन कब आवेंगे कि बस बैठे रहे ध्यान में, भरतृ की नाई। भरतृ महाराज लिखते कि मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे कि तुम्हारे आनंद में समाधिस्थ रहूंगा। जंगल के बूढ़े हिरण मुझे पत्थर की शिला समझकर अपने सींगों की खुजली मिटाने के लिए रगड़ मारे, उन्हें पता न चले कि मैं कौन हूँ और मुझे पता न चले कि किसने रगड़ मारी, मैं तेरी मस्ती में बना रहूँ। मेरे ऐसे दिन कब आए? उन दिनों का मुझे स्वाद याद है जैसे कोई सीएम होने के दिन देख लिया और बस सीएम की गादी से उतर के बेचारा अपनी सुरक्षा में घूमता फिरे, तो सीएम होने के दिन उसको कैसे याद आते होंगे जयराम जी की, पीएम होने के दिन कैसे याद आते होंगे। अब पीयून होकर जीना पड़ता है, पहले पीएम थे अब पीयून जैसा जीना पड़ता है तो कैसा लगेगा। ऐसे ब्रह्म सुख में एकांत में मस्त होने वाले अब भाई ये, अब ड्राइवर की जरूरत, अब इसकी, अब उसकी, किसी की जरूरत नहीं है। अपने सच्चे सुख के लिए, कच्चे सुविधा के लिए, कच्चे सुख के लिए दुनिया भर की गुलामी, और सच्चे सुख के लिए ईश्वर की भी जरूरत नहीं। लो बाबा ये क्या बोल दिया, ईश्वर की भी जरूरत नहीं, फिर बाहर के ईश्वर की जरूरत नहीं रहती। अपना आत्मा ही परब्रह्म स्वरूप होता है, ईश्वर जिससे ईश्वर है उसी से हम कहाँ खाली है। ऐसा अनुभव किया हुआ पुरुष कितना नीचे रहेगा, कब तक नीचा रहेगा। नानक जी भी उब गए लोक संग्रह से, 60 साल की उम्र में नानक जी ऐसा उग्र रूप धारण किए, लेकिन मैं कच्चा निकला, मैं करता हूँ लेकिन टिकता नहीं, फिर हंस पड़ता हूँ, लोग पहचान जाते बापू जी हैं तो ऐसा है, मैं फेल हो गया। नानक जी पास हो गए, नानक जी ने उग्र रूप धारण किया, कोई फटकता नहीं था। हमने 40 दिन थोड़ा ऐसा किया, फिर देखा कि आए वो आए बाबा, चलो खोलो मुँह, चलो जरा इनको दे दो, चलो जरा इनको दे दो, इनको दे दो, इनको देते हो, आयुष्य तो बीता जा रहा है। एकांत और मस्ती के दिन प्रवृत्ति में ही जा रहे हैं, निवृत्ति के दिन। फिर भी शुक्र है इतने लोगों की उन्नति होती है, ऐसा मन मना के थोड़ा मौज भी कर लेते हैं भाई। चलो नारायण हरि, नारायण हरि। ये सब छोड़ो, इसका मूल्य बहुत चुकाया है मैंने। ये गुरुदेव भगवान के नाम का बहुत मूल्य चुकाया है, अभी छोड़ो बाबा, माफ करो। सद्गुरुदेव की जय, गुरु भगवान की जय, इसका मूल्य तो अभी भी चुका रहे, अभी भी चुका रहे, अब बंद करो, माफ करो महाराज, माफ करो नारायण। गुरु प्रसादी आपन आप सुझे, तिस के जन की तृष्णा बुझे। गुरु के प्रसाद को पचाए तो अपना आपा सुझेगा, वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब महाराज क्या हुआ कि मार्कंडेय ऋषि के यहाँ दांत मुनि रहते थे और मुनि को आज्ञा की थी तो कि तुम इस प्रकार ध्यानस्थ होकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना। अब ये भाई साहब पहुंचे हैं भद्रतनु ब्राह्मण मार्कंडेय ऋषि के चरणों में। हे महामहिमों के महामहिम, हे परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, मार्कंडेय ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बड़े आदर से विनय से दूर स्पर्श नहीं करता। महापुरुष को संकोच हो ऐसा व्यवहार करने से आशीर्वाद थोड़े मिलता है, जाकर पैरों पे गिरे या ये ले लो ये दे दो शोरगुल किया तो फायदा क्या मिला। महापुरुष से दुआ लेनी, उनकी निगाहों की कृपा लेनी, तो उन्हें उनके अनुकूल अपना वातावरण बनाना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के पास गए और उनके अनुकूल वे बनकर प्रार्थना करने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भद्रतनु, पहले का भले तूने ऐसा ऐसा वैसा गमन किया, पाप किया है, लेकिन विवेक की किरण मिली है। ईश्वर ने वैशा के द्वारा तुझे जगाया है, तू धन्य है। आखिर तो सत्व अंश से अंतःकरण बनता है, जीव हमेशा निर्दोष है, दोषी तो आगंतुक विकार है। हे भद्रतनु, सुमध्या भी निर्दोष है, लेकिन दोषी माहौल में जीते जीते दोषी कृति करने लगी। अब तुझे जगाने वाले ने उसको भी जगाया है, वो भी वो अपना नीच धंधा छोड़कर संयम सदाचार से भगवत कथाओं में जाती है। भगवत कथा उसके जन्मों की व्यथा मिटा देगी। अब मैं तुझे अनुष्ठान बताऊं, उतना मेरे पास समय नहीं। तू मेरा शिष्य जो दांत मुनि है उसके पास जा। मत्सरहीन, दूसरे की उन्नति देखकर जो जलते हैं उनको मात्सरिक पीड़ा होती। मत्सरहीन रहना, अहोरात्रि व्रत कर देना, अर्थात सुबह और रात्रि अन्न का त्याग करके शुद्धिकरण कर ले।